शांति। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान जो है अनुभवों की खान, आज है अभी हमारी महफिल की शान। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी, आप हमारी पूरी संस्था की वर्तमान समय सह प्रशासिका है। वर्तमान समय आप पूरे अमेरिका और कैरेबियन के भी आप रीजनल कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर है। बाल्यकाल से मैं समझती हूँ, जब वो अपने यूथ में थी तब आपने ये ज्ञान की प्राप्ति की। और एक बड़ी विशेषता की बात है कि उनके परिवार के 40 सदस्य इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और इस संस्था से कोई ना कोई रूप से जुड़े हुए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। जब आप कॉलेज के छुट्टियों में माउंट आबू आया करती थी तो वहां उस समय हमारे फाउंडर ब्रह्मा बाबा स्थापक और हमारी मुख्य प्रशासिका उस समय जगत अम्बा माँ सरस्वती जी के साथ आपको रहने और उनकी बहुत श्रेष्ठ दिव्य पालना पाने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। और आज हमारे बीच में आए हैं तो मुझे बस वही याद आ रहा है कि उनके साथ हमारे बाबा मम्मा की भी बहुत सारी यादें आज स्टेज पर आ गई है। आपने हमारी दादियों के साथ साथ हाथ में हाथ डाल हर एक सेवाओं के लिए आपने अपनी उपस्थिति महसूस कराई। और जब हमारे स्थापक ने कहा कि आपको अभी अमेरिका जाना है, आप इंग्लिश हैंड हो, आप इंग्लिश बोल सकती हो, आपको अपनी विशेषताओं से सेवा करनी है, और उस समय वहां कोई भी प्रकार की सेवा हुई नहीं थी, और आप जब गए तो आपने वहां पर संस्था का नाम बहुत रोशन किया। 1980 में आपने एक बहुत बड़ी सेवा की उपलब्धि हासिल की। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसमें आपने जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसमें आप एक मेंबर बने। उस आधार से आपको एक ऑफिस मिली यूनाइटेड नेशंस में, और साथ में इकोसॉक करके जो वहां पर एक फोरम है उसमें आप एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी बने। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर, कहे तो हमारी संस्था की आप प्रमुख वक्ता है, और इंटरनेशनल लेवल पर आपने अनेक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर, जिसमें इवन देशों के बहुत सारे निर्णय लेने की मीटिंग्स होती है उसमें भी आपने हिस्सा लिया है, और परमात्मा का और इस संस्था का नाम आपने रोशन किया है। आप सचमुच अनुभवों की खान है, क्योंकि हम सब बहनें भाई जितने भी संस्था में रोज के रोज आते हैं, हम उनको बिल्कुल बाबा के समान हम महसूस करते हैं कि बस उनके साथ बैठो और उनकी सारी यादें उनकी सारी शक्तियां हमें मिल जाती है। ऐसा हमें नित अनुभव होता है। मेरा तो पर्सनल भाग्य है, मेरे सेंटर का आरंभ ही उनके साथ न्यूयॉर्क में हुआ है, जो मेरे लिए अविस्मरणीय यादों में से है। तो मैं ऐसी महान हस्ती को आज मोहिनी दीदी जी को दिल व प्यार सिख व दिल से चांद से आज स्वागत करती हूँ, और उनके साथ आई भूमि बहन का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। मैं बहनों से नम्र निवेदन करूंगी कि ये तो बहुत ही छोटा है पुष्प से उनका स्वागत करना, लेकिन आप सब समझना कि आप उस पुष्प के बहुत अंदर में अंदर बैठे हुए सभी गुच्छ में और हम सब मिलके उनका स्वागत कर रहे हैं. ओम शांति.
ओम शांति. ओम शांति. आप सभी जब ओम शांति कह रहे हैं तो ओम शांति का अर्थ है, क्या अर्थ है? मैं हूं शांत स्वरूप. मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप. जब आप शांति शब्द सुनते हैं देखो प्रकृति भी खुश है आपसे. आज प्रकृति भी खुश है आपसे भी जोरदार तालियां वो बजा रही है. अभी ठीक लग रहा दोनों की आवाज ऊपर से यहां से. मैं शांत स्वरूप आता हूं. सभी इस समय शांत है ना कि मन में कोई हलचल है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है? नहीं है ना. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ये ऐसा महामंत्र है कि जब भी बाहर की परिस्थितियों में कोई भी प्रकार की हलचल हो लेकिन मेरा मन अचल हो, अडोल हो और एक रस हो, ये हमारे यहाँ की शिक्षा भी है. और इस शिक्षा का जितना जितना अभ्यास करते हैं तो हम सभी का मन जो आत्मा का स्वधर्म है शांति, मैं इसलिए धीरे बोल रही हूं कि आप थोड़ा उसका अनुभव करिए. मन शांत. जीवन में कई बातें प्रिय होती हैं, हर एक की अपनी अपनी हॉबी होती है, प्राप्ति होती है, विशेषता होती है. पर एक प्राप्ति उपलब्धि सबको बहुत प्यारी लगती है, वो है जीवन की, जीवन में सफलता, सक्सेस. तो जब सफलता है तो सफलता के कारण न केवल अंदर संतुष्टि होती है, कंटेंटमेंट, सफलता के साथ साथ एक जीवन का संतुलन, बैलेंस, कोई भी लाइफ में अगर संतुलन की कमी होती है तो असंतुष्ट है। और जब असंतुष्ट है तो खुश नहीं है, अपना जो स्वभाव है, टेम्परामेंट है, वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, थोड़ा सा क्रोध का अंश सारा दिन रहता है। सफलता के लिए चाहिए कुशलता, सफलता के लिए चाहिए कैपेसिटी, एबिलिटी या कुशलता, जिसमें निर्णय करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, राइट टाइम पर राइट निर्णय, तो वो दोनों कुशलताएं राजयोग के अभ्यास से बढ़ती हैं। मैं जब वहां जहां रहती थी दिल्ली में, सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया, तब मैं स्टूडेंट थी, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने देखा कि कंसंट्रेशन एकदम जंप होने लगी। एक बार पढ़ लो, सारी किताब भी पढ़ लो, तो याद रहता था कौन कहाँ किस तरह से। तो एकाग्रता जब होती है, एकदम मन चित जिस बात पे जहां है तो एकाग्र हो जाते हैं, अंदर में एक चित हो जाते हैं, मन का एक ऐसा संयम हो जाता है, जो हम ये नहीं कहते कि सोचना तो नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, सोच चलता है, मन के तूफान का कहो, मन के संघर्ष का कहो, बहुत ही अनुभव होता है। हमारे ब्रह्मा बाबा भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, आप सबको पता है कि उनका ज्वेलरी का, विशेषकर हीरे जवाहरात का बिजनेस था, बहुत कुशल थे, और 60 वर्ष की आयु में उनके मन में कुछ वार्तालाप चलने लगा। हम सबके मन में वार्तालाप तो चलता है, कई बार हम सुनते हैं उस वातावरण वार्तालाप को, डायलॉग को, और कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि मन तो चलता है, ठीक है। तो उनका जो वार्तालाप था वो उनके मन और बुद्धि उनका मन व्यापार में तो यही होता है ना कि और बड़े ज्यादा क्लाइंट्स हों, ज्यादा सब कुछ हो। और बुद्धि उनको कह रही थी कि कुछ और भी करो, तुम घोड़े की तरह क्यों भाग रहे हो, थोड़ी लगाम भी लगाओ। तो उनकी हमें छोटी छोटी डायरियां मिली जिसमें उनको जो उनका वार्तालाप था वो लिखते थे। वो तो उसके बाद तो पूरा इतिहास है कि कैसे उनको फिर दिव्य साक्षात्कार हुए। उन दिव्य साक्षात्कार और जो ईश्वरी संदेश मिला वो उन्होंने फिर सुनाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ही घर में ओम की ध्वनि लगाते थे, तो आसपास के, पहले तो ऐसे ही होता था ना, अपने पड़ोसी वगैरह सब मित्र संबंधी ही होते थे, तो बहुत आने लग गए। उनको भी ये स्पष्ट नहीं था कि सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, कश्मीर में गए, एक दो और स्थानों में गए जहां उन्होंने एकांतवास किया, थोड़ी साधना करके अपने मन का, अंदर का जो संदेश था, परमात्मा का जो संदेश था, उसको समझने की कोशिश की। परंतु उनके जो तीन प्रकार के साक्षात्कार थे उसमें से एक साक्षात्कार था, उनको लाइट दिखती थी। एक तो लाइट है, लाइट, दूसरा जैसे कि एक ज्योति की तरह, ज्योति बिंदु बिंदु रूप में। वो नारायण की पूजा करते थे, श्री कृष्ण नारायण के भगत थे, तो जब वो लाइट देखे, अब देखते हैं ना कि कई कमरों में इधर उधर लाइट लगी होती है, जब तो उन्होंने, जब उनको फिर ये सुनाई पड़ने लगा कि मैं शिव हूं, मैं ज्योतिर्लिंगम हूं, तो धीरे धीरे वो, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि हम कहते हैं शिव बाबा, हम शिव नहीं कहते, हम कहते हैं शिव हमारा पिता है। किसका पिता है? हम सबके तो अलग अलग पिता हैं, माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, परंतु एक माता पिता जिनकी हम आरती गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, सर्व संबंध एक के साथ, वो कौन है? जिनको फिर हम कहते हैं परम पिता, पिता शरीर के परम पिता। उसके बाद उनको साक्षात्कार हुआ कि बहुत, कई बार ऐसे ध्यान में बैठे बैठे बड़े सुंदर सुंदर बालक, बच्चे बच्चे बच्चे, जैसे राजकुमार राजकुमारी आपस में खेल रहे हैं, बहुत सुंदर उन्हें नजारा देखा कि हरे तुम सभी, हर मानव पहले देव स्वरूप है, तो अंदर में सुर और असुर का युद्ध चलता है, पर हमें तो बाबा ने बताया कि आप सभी में वो दिव्यता है, दैवी स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे अपने वो स्वरूप को भूलते गए और आश्रित गुण, अवगुण, बुराइयां सब ग्रहण करते गए। तो उन्होंने पहले पहले हम सब ने जब ये दृश्य सुना तो एकदम ऐसा लगा कि हाँ ये तो राइट बात है, मुझे तो एकदम एक मिनट में ही लगा, क्योंकि मैं तो बचपन वो लोग कहते थे कि मनुष्य का पूर्वज जो है वो बंदर है, मैं बहुत ही अपसेट में इनका नहीं, हमारे पूर्वज तो देवी देवता ही हैं, हम तो देवी देवता सनातन धर्म आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं, और तब से जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फिर तीसरा उन्होंने देखा कि बहुत दुनिया में बहुत ही बॉम्ब्स बन रहे हैं विनाश के लिए, जैसे समुद्र के नीचे इधर उधर। इस समय अगर आप कभी संख्या पढ़िए किस देश के पास कितने हैं, एक पैसे में, धन में कौन सबसे ज्यादा है, परंतु हथियार जो उनकी वो संपत्ति मानते हैं अपने, उसमें कौन नंबर वन है। तो उन्होंने जैसे देखा प्राकृतिक आपदा, इस तरह से विनाश भी है। तो हम लोगों के अंदर रात दिन अपना दिव्य स्वरूप और हमारा कर्तव्य है दैवी राजधानी, दैवी दुनिया, सुंदर दुनिया, सतोगुणी दुनिया बनानी है। ये संदेश स्पष्ट होता गया। आप लोग अपना प्रातः काल का सेशन तो करते ही होंगे, तो सबसे पहला जो परिचय मिला कि ये जो मैं और मेरा कहते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे शरीर का नाम मोहिनी है, पर मैं कौन हूं, कहते हैं सारे तपस्या साधना मनुष्य इसलिए करते हैं कि खुद की पहचान मिले, मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ, क्या सवेरे उठ के जो करते हैं, उठे चाय पी, ड्यूटी पे गए आए, भोजन किया सो गए, ऐसे जीते रहेंगे एक साल, दो साल, पचास साल, अस्सी साल, डिपेंड अपनी आयु पर। तो कुछ जचता नहीं था, क्या जिंदगी सिर्फ अच्छा भोजन मिले, अच्छा मकान मिले, इसके लिए ही है या कुछ और भी है। तो इतना बड़ा काम मिल गया, सबसे पहले कि मैं एक ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं, बड़ी सूक्ष्म ज्योति बिंदु के समान, लाइट और माइट, हाथ चलता है, मुख से बोल रहे हैं, माइट है ना, जिसको कई लोग एनर्जी कह देते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और ये शरीर वाहन है मेरा, ये शरीर मेरा रथ है, व्हीकल है। मंदिर है, अगर आप में दिव्यता है तो शरीर एक मंदिर है। तो जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज, निजी स्वरूप, अनादि स्वरूप, इटर्नल एंड ओरिजिनल। अभी जो हम दुनिया में मनुष्य के जीवन है वो नेचुरल नहीं है, वो अक्वायर्ड है। किस धर्म में जन्म हुआ, माता पिता क्या करते हैं, फिर सच बोलना है, राइट? बचपन से हम सुनते हैं सच बोलना है, बहुत अच्छा है। बच्चा तो सच ही बोलता है, बच्चे के मुंह से बात जो निकलती है उसको तो कोई लोभ क्रोध है नहीं, तो सच्ची होती है। टेलीफोन आता है, माताजी से कोई बात करना चाहता है, हमारी माताजी बहुत व्यस्त हैं या उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती, तो कहती है तुम बोल दो वो घर में नहीं है। दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो तो कहते हैं सच बताओ, माता जी तो यहां बैठी है और कहती है कह दो हम घर में नहीं है। अब बच्चा क्या करे, झूठ बोले कि नहीं, और नहीं बोले तो मार पड़ती है, थप्पड़ लगती नहीं है पर दिखाते हैं, हमने तो कभी जीवन में थप्पड़ नहीं खाई पर देखी ऐसे, हाँ देखो नहीं करोगे तो क्या मिलेगा आपको। तो एक संघर्ष पैदा हो गया, सच बोलना है पर घर में अगर कोई आपसे कहे ये करो और आप नहीं करो, आप झूठ बोलना नहीं चाहते। तो उस संघर्ष में, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में हम सब बड़े होने लगते हैं। फिर ऑनेस्ट आदमी इस दुनिया में सफल नहीं होता, आपको थोड़ा हेरा फेरी करनी पड़ेगी, ये भी प्रिंसिपल है। और दूसरी तरफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब उसको माने, या जो व्यवहारिक भाषा है भाई थोड़ा बहुत तो हेरा फेरी, थोड़ा बहुत मिलावट, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा। देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष के जीवन अंदर में। तो जब हम आए यहां पर और आप सब आए हैं तो ईश्वरीय ज्ञान जो मिलता है ना, और फिर मेडिटेशन करते हैं तो आत्मिक बल, मनोबल सब बढ़ता है। कई तरह की आपकी कैपेसिटीज इतनी एक्सपांड होती हैं। जो मेरा मूल्य है मुझे उस पर चलना है, देखिए जब भी दिवाली की पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, तो महालक्ष्मी या लक्ष्मी जी को रखते हैं और साथ में किसको रखते हैं, गणेश जी को। क्यों रखते हैं कि विवेक होना बहुत जरूरी है, लक्ष्मी भी उसके साथ ही रहती है। और अगर दोनों का साथ है अभी अभी हम सभी ने गणेश चतुर्थी मनाई बहुत गणेश जी की पूजा भी हुई सब कुछ हुआ तो ज्ञान कोई हम लोग शास्त्र पढ़ लिए पंडित बन गए वो हमको नहीं मेरे एक नॉर्मल लाइफ फैमिली लाइफ व्यवहारिक संसारिक लाइफ होते हुए भी जो हर देवताओं के हाथ में दिखाते हैं वो एक ही फूल दिखाते हैं एक ही फूल दिखाते हैं आपके मन में जवाब आ गया होगा वो कौन सा फूल होता है कमल फूल लिव इन द मड एंड लिव अ बॉय सारा तालाब है नीचे बहुत कीचड़ है कमल पुष्प की पानी के अंदर 9 रिलेटिव्स हैं मतलब 9 डिफरेंट थिंग्स हैं और ऊपर ये न्यारा है और प्यारा है तो प्रवृत्ति में रहते हुए एक कमल पुष्प समान जीवन तो ईश्वरी ज्ञान जैसे ही मिलेगा मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है तो एक अंदर से मैंने अपनी माता जी को देखा ये ज्ञान सुनने के बाद तो मैंने कहा कितने जन्म हमने लिए हैं इतने जन्म में अलग अलग मां तो अगर अलग अलग माँ बाप हैं तो वो यही होंगे ना इसके बाद और मिलेंगे फिर और मिलेंगे पिछले थे तो एकदम ऐसा दिल खुल गया कि सबसे प्रेम करो क्योंकि सभी अपने संबंधी हैं क्या पता किस जन्म में कहाँ किसी न किसी संबंध में हम सभी थे तो एक बेहद कसने फिर परमात्मा की संतान है तो भाई बहन हो गए आत्मा के रूप से देखें तो सब भाई भाई हो गए तो एक अंदर में संबंध सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना कई प्रैक्टिकल बातें पूछते हैं किसी ने ये किया फिर कैसे हमारे दिल में शुभ भावना हो ये इसने ये किया फिर कैसे हो अच्छा नहीं किया पर आपने शुभ भावना दी आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी चुक तो हो गया और एक नया संबंध भी दिल से बन गया क्योंकि ये भी कर्मों का हिसाब किताब होता है ना तो ये सब है इसको समझ कहते हैं कि समझ आ गई विवेक की जागृति हुई पहले आंखों से देखते थे इसका रंग क्या है रूप क्या है कौन से वस्त्र डाले हैं कौन से जेवर डाले हैं अब क्या देखते हैं कि चेहरे पर मस्तक पर उसकी अशांति प्रकाश कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड मन में क्या है वो सब चेहरे पर दिखते हैं तो जैसे कदम कदम पर समझ आती गई तो मन में परिवर्तन सोचना क्या है कई मेरे से पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती हैं मैंने कहा सोचना सिखाती हैं राइट सोच क्या होता है ना, तो राइट सोच ज्ञान के आधार पर, तो इसलिए जीवन की सफलता कुशलता शांतमय सुखमय जीवन के लिए चार बातों की आवश्यकता है। व्यापारी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? इतना समय नहीं कि आपको ये कहानियां सुनाए, पर आप सबने सुनी भी होगी कि लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? नारायण से। अपनी भगत पर तो खुश होगी, लेकिन उससे पहले नहीं, दिवाली पे कहानी सुनाते हैं कि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है नारायण का होना भी जरूरी है। तो धन समर्थ धन संपत्ति पदार्थ अपने परिश्रम से अपने भाग्य से मिलता रहता है, लेकिन दिल में हमारे माता पिता परम पिता प्रभु का प्यार जिनको परमात्मा से प्यार होता है, सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, प्यार होता है माता पिता की तरह, प्यार होता है सतगुरु की तरह से प्यार होता है, तो उनके अंदर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिन भर थैंक्स निकलता है, थैंक्स ये भी अच्छा हो गया, थैंक्स आप लोग यहां पहुंच गए, थैंक्स राइट मैं यहां पहुंच सके, थैंक्स नम्रता का स्वभाव ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि करण करा मनहार मैं एक है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। हम सभी जिसको बहुत अच्छा शब्द है, मैं तो ट्रस्टी हूं। हम सभी को जो भी कार्य हमें मिला है, जिम्मेवारी हमें मिली है, वो ट्रस्टी होके करते हैं, कमल पुष्प भी हूं और ट्रस्टी भी हूं। देखिए लक्ष्मी राजी तब होती है जब हम उसका सदुपयोग करते हैं, जिस धन से हम सुखी रह सकते हैं उसको ऐसे कार्य में लगाना शायद मैं बहुत बड़ी बात कह पाऊंगी, कोई भी प्रकार की हिंसा और वो भी अपने जीवन निर्वाह के लिए, जबकि प्रकृति ने हमें हर प्रकार का भोजन, हर प्रकार का अनाज, फल, सब्जियां दी हैं, तो हम लक्ष्मी है, धन है, उससे जाके क्यों मांसाहारी भोजन जीव घात करेंगे? संभव नहीं है। किसी को मार के मैं जीऊं, कोई भी, लक्ष्मी का यूज प्रॉपर यूज नहीं है। वो धन किसी भी तरह की नशाबंदी करना, किसी भी प्रकार की, चाहे वो बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, चाहे शराब है, चाहे कुछ भी है, ये लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं है। बेशक धन होगा, बढ़ भी रहा होगा, लेकिन उसका सुख नहीं होगा। देखिए, धन बहुतों के पास होता है, पर धन का सुख सबको नहीं लेना आता। या तो बहुत कंजूस है, या तो व्यर्थ गंवा रहे हैं। देखिए, आप यहां आए, बाबा के भंडारा चलता है, भोजन बनता है, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ तो कई बार यूट्यूब में यहाँ का किचन देखती हूँ, तो नई मशीनें लगी थी, तो एक मशीन है जिससे दूध निकलता है, तो बहुत तेज से निकलता है और आपका ग्लास आधे मिनट में भर जाता है। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि स्टॉप भी होता है या नलका चलता ही रहता है, तो कहते हैं वो बनाया हुआ है, एक कप जब भरता है तो स्टॉप होता है, फिर रखो तो दूसरा होता है। कोई के पास 100 रुपए देने की क्षमता है, किसी के पास 10,000 देने की क्षमता है, हर एक अपनी क्षमता अनुसार बाबा के भंडारे में डाल दे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने ये नियम बनाया था कि आप लोग मांग नहीं सकते, तो हमने कहा बाबा कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बाबा का भंडार है ना, बाबा चलाएंगे। और फिर हम लोगों में चेंज आती है, पहले जहां गए यहां पर यूज करो, ये करो, अभी जरूरत नहीं, लोभ तो है नहीं, आवश्यकताएं तो मनुष्य की सोचो तो बहुत थोड़ी है। तो लक्ष्मी का जो सही तरह से, जिसको कहते हैं ना, कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कैसी भी कठिनाई होगी उस आत्मा का साथ देती है। एक बार मैं लंदन एयरपोर्ट पे थी, जा रही थी, इंडिया आ रही थी, तो उन्होंने फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो मैंने बोला कि फोन करूं सेंटर पे बताने के लिए कि मेरी फ्लाइट नहीं गई है, तो होटल में नहीं जाना चाहती मैं, आप लोग आके ले जाओ मेरे को। तो पैसे कहाँ से आए मेरे पास, पाउंड डॉलर्स तो थे पर पाउंड कहाँ से आए। तो मैं टेलीफोन के नज़दीक गई, मैंने कहा देखूं शायद डॉलर भी जाता हो कॉइन। तो वहां पर जितने मुझे पैसे चाहिए थे, 45 सेंट चाहिए थे, पेनीज, वो फोन के ऊपर रखे हुए हैं ऐसे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं उठा सकती, पता नहीं किसके होंगे। तो मैंने कहा चलो जो आएगा कोई, उसको $1 दे देंगे, उसके इक्वल एंड पे दे दूंगी। पर मैंने दिल में ये सोचा कि जो भी भूल गया किसी कारण से, तो मैंने फोन किया. ऐसे हजारों बार मैंने देखा है. लक्ष्मी का साथ रहता है. हम लोग अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप 7 दिन का कोर्स कराते हैं, कितनी फी लगेगी? मैंने कहा हमारे हम तो फी नहीं लेते हैं. बोलते हैं कहावत है नो मील इज फ्री मील, राइट? नो लंच इज फ्री लंच. अब बाद में तो बिल भेजेंगे जरूर. हमने कहा नहीं भेजेंगे. हमारे बाबा का ये नियम है, हम तो नहीं तोड़ सकते इसको. बाबा का भंडारा देखो कितने, कम से कम 8,000, 10,000, 15,000 तक भोजन बनता है. अभी 3 कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, उसके अलावा हम घर वाले जो हम लोग हैं सभी, वो भी कई काफी संख्या में है. इतना अनाज आता है, रोज पकता है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पकाने वाले हैं, मैं कई बार उनको बुलाती हूं अपने पास. 35 साल, 40 साल से वो लोग भोजन बना रहे हैं. सोचिए, मोस्टली सब भाई हैं, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी होती है ना. माताएं रोटी बनाती हैं. तो एक यहां आकर के आपको एक नजारा मिलेगा, जो जिसको हम कहते हैं कि दुनिया, सत्यता, पुण्य कर्म. कितनों ने अपनी जीवन सेवा के लिए, कई सिर्फ 1-2 दिन आते हैं, चलो सेवा करें हम. तो मैं ये जो 4 कह रही थी ना, वो एक होता है मन का सुख, मन की शांति, नंबर 1. कुछ भी हो जाए बाहर की परिस्थिति में, हमारा मन शांत रहे. तो कहते हैं कि मन की स्थिति होती है एक परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस. परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, पर मतलब मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है. सर्कमस्टेंसेस समुद्र की वेव्स हैं. अच्छा तैरने वाला इंतजार करता है कि बड़ी लहर आए, न तैरने वाला बेचारा पीछे भागता रहता है. बाबा ने राजयोग से जो अष्ट शक्तियां हम में आती हैं, वो एक तैरने वालों की तरह से कि लहरें आएंगी, सर्कमस्टेंसेस आएंगी. बाबा पर निश्चय है, ज्ञान है, उनकी याद है, अपनी स्थिति को ठीक रखा है, तो परिस्थिति तो चले जाएगी. पर जब स्थिति जाती है, मन बेचैन हो गया, नींद नहीं आ रही है, चिंता लगी हुई है, बहुत मुश्किल होता है. सबको अनुभव है कि मन में कोई भी चिंता हो, कितना भी अच्छा बेड है, रोज नींद आती है, उस दिन नहीं आती, नहीं आती. तो मन, यहां आप जो कुछ सीखेंगे, मन का कंट्रोल नहीं चाहिए, पर एक संयम चाहिए. और उसके लिए कुछ नियम होते हैं. नियम संयम बोलते हैं साधना में. तो एक मन है, दूसरा हमारा तन है. स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है. किसी भी कारण से, कोई भी कारण से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, परंतु अगर मन आपका ठीक है तो आप तन को भी चला ले, बहुत काम निकलता है। मैं साल में 2 बार 3 बार आजकल यहाँ थोड़ा लंबा समय रहते हैं तो न्यूयॉर्क से यहाँ ट्रेवल करके आती हूँ। तो अगर तन को देखें तो आज भी सबको ये कह रही थी कि बहुत अच्छा लगता है मैं घर में बैठूं। सेवा है, जब से ये नई असाइनमेंट मिली है थोड़ा ज्यादा समय रहते हैं, तन भी साथ देता है। तीसरा है धन। हम में से हजारों की समर्पित जीवन है, हम कभी भी डायरेक्टली हाथ से मिलता भी है तो बाबा की भंडारी में डालते हैं, बाबा के यहाँ से भोजन वस्त्र जो हमें जरूरत है वो मिलता है। ट्रेवल करने का टाइम आता है तो कई कहते हैं मेरी बहन आपको जाना है, आपकी टिकट बनवा देते हैं आप। तो मन तन धन, और चौथा जो सबसे बड़ा है वो है जन, पीपल, संबंध, व्यवहार। उसमें स्वभाव अच्छा हो, बोलने में मधुरता हो, वैर भाव न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, सबके प्रति शुभकामना शुभ भावना हो। तो ये चारों अपने जीवन में भाग्य में चारों ही अगर एक संतुलन में रहें, मन तन धन जन, तो सफलता है। तो ये जैसे एक जीवन का संतुलन भी है, फिर ऐसा लगता है कि करना क्या है, सब कुछ खो चुके हैं उसको फिर पाना है, जिसको हम कहते हैं कि वी आर रिक्लेमिंग। रिक्लेमिंग मतलब वी हैड लॉस्ट, अब फिर से उसको रिगेन करना है, रिक्लेम करना है, कुछ नया नहीं है। अब फिर हम आते हैं क्या रिक्लेम करना है। मैं आपको अभी मेडिटेशन का भी टाइम है, करते हैं। अगर हम भगवान के बच्चे हैं, वो तो है ही, तो माँ बाप से भी कुछ ना कुछ तो इनहेरिटेंस वर्षा मिलता है, ये वारिस है। माँ बाप से कुछ ना कुछ, कोई गरीब भी होगा तो थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए रखते ही हैं, देते ही हैं, उसका वर्षा, उनसे क्या वर्षा मिलता है, बाबा से क्या वर्षा मिलता है, मांगते ही रहेंगे क्या, हकदार भी तो है। मैं तो कभी नहीं मांगा, बस ज्ञान से पहले भी मैं कहती थी माता पिता है उसको पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। आज तो हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे सुपरमार्केट जाते हैं ना तो भगवान के पास सुपरमार्केट की तरह थोड़ा ये दे दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा ये कर दो। ए भाई, भगवान को छोटे छोटे काम क्यों दें। हाँ, उसकी याद में रहो, उसका आह्वान करो, उससे शक्ति लो और करो, करवाएगा वो आपसे नहीं। तो हमारे जो निजी आत्मा के गुण हैं, तो परमात्मा का वर्षा, मैं आज भी किससे दो तीन बार से लोगों से बात हुई, एक बच्चे को देख के पता लगता है कि उसने माँ बाप से क्या संस्कार लिए हैं और जिन्होंने नहीं लिए हैं, बाहर से ले रहे हैं, मित्रों से ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, पता लगता है। अच्छे माँ बाप बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। अच्छे संस्कार बहुत बड़ा वर्षा है, वो हम सबको मिला हुआ है, हर आत्मा को परमात्मा से वो संस्कार का वर्षा मिला हुआ है, लेकिन न हमें मालूम है तो हम यूज भी नहीं करते और फिर खो भी दिया। तो वो संस्कार क्या है, कौन से संस्कार है, उस सात गुण है। तो अभी हम मेडिटेशन में मैं आपको एक एक गुण बताती जाऊंगी। योग करते हैं अभी सभी, तो देखो ज्ञान क्यों सुना जाता है, मनन चिंतन बाद में आपको स्मृति आएगी कि ये बात सुनी थी, ठीक है नहीं है। मन को जब तक सवेरे ईश्वरी ज्ञान का मनन चिंतन नहीं देते, तो दिन भर फालतू इधर की बात उधर की बात, पिछली बात, 10 साल पहले की बात, कुछ तो मन सोचेगा ना। जब तक ऐसा हो कि आप एकदम एकांत में साइलेंस में चले जाओ, वो भी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अभी तो मन को सोचना ही है, बंद नहीं होता। पर क्या सोचे, बस इतना फर्क पड़ जाता है। मन को हमको दमन नहीं करना, पर मन को सुमन करना है, सुमति रहे भगवान, अच्छी मति रहे। तो सभी मैंने देखा बहुत अलर्ट बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, थोड़ा फिर भी सीधा होके बैठेंगे तो अच्छा है, और अपनी टांगे थोड़ा ऐसे मोड़ के नहीं बैठिए, सीधे पैर रखिए, तो आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो है, सीधा बैठने से ऑक्सीजन फ्लो होता है, तो थोड़ा ब्रेन फ्रेश रहता है। चाहे आंखें खोल के बैठिए और सामने बाबा को देखिए, चाहे बंद भी करें, लाइट चेंज कर दी और म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे। ब्रिकुटी के बीच में दो नेत्रों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, किसी भी तरह का तिलक, वहां विराजमान हूं मैं एक आत्मा। इसीलिए तिलक लगाते हैं। मैं एक ज्योति स्वरूप, अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा हूं, ज्ञान समझ आत्मा के अंदर निजी संस्कार है। संसारिक व्यवहारिक पारिवारिक ज्ञान उससे तो भरे पड़े हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन अब मैं आत्मा ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान मैं आत्मा मेरा निजी संस्कार निजी स्वरूप निजी गुण इटर्नल एंड ओरिजिनल क्वालिटी कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की शालिग्राम आत्मा हूं। ईश्वरी संतान ये सभी मुझ आत्मा के आदि अनादि गुण हैं। परमात्मा पिता इन सभी गुणों के सागर हैं और मैं स्वरूप मन को इस प्रकार से मनन करते करते एक परमात्मा से जोड़ना है, टिकाना है। हम सबकी जीवन कर्म योगी जीवन है। हर कर्म शुरू करने से पहले एक क्षण बाबा को याद कर शुरू करें। जहां बुद्धि के एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है, तो कर्म करते समय भी बाबा की याद में रहें। जिस शक्ति की, जिस गुण की आवश्यकता, उसमें प्रकट होंगे, जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता ब्लेसिंग्स की है, दुआएं, आशीर्वाद। बैलेंस कर्म और योग का ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय जीवन और सदा ब्लेसिंग्स, वरदानों और दुआओं से भरपूर होगी। व्यापार, व्यवहार, परिवार सब में सफलता, सुख और समृद्धि होती है।
ओम शांति। हमारी आदरणीय मीठी मीठी मोहिनी दीदी जी का हम दिल से आभार मानते हैं। आप आए, अपना मोस्ट वैल्यूबल समय आपने हमारे साथ बिताया, हमें आपने शक्ति का बल हमें प्रदान किया। और दो बातें तो बराबर याद रह जाएगी कि लक्ष्मी जी के साथ कौन है, गणेश जी, अर्थात धन के साथ विवेक का साथ होना बहुत जरूरी है। संतुलन, बैलेंस के लिए उन्होंने कमल का उदाहरण दिया कि सदा बैलेंस से अपने जीवन को चलाएं, व्यवहार को चलाएं, तो जरूर व्यापार में भी आपको बहुत बहुत सफलता प्राप्त होगी। ऐसे उनके वरदानी वचन है, ये आप सदा याद रखना। जिन्होंने भी आज सुना है, आपको वरदानी वचन मिले हैं, तो जरूर अवश्य फलीभूत होंगे, ऐसी हमारी पूरी मतलब पूरा विश्वास है। ऐसे कहते हुए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहिनी बहन।
ट्रैफिक कंट्रोल चलेगा ना, अभी योग करेंगे ना, ट्रैफिक कंट्रोल
अभी 2-3 मिनट के अंदर अपना गीत बजेगा ट्रैफिक कंट्रोल का, तो सभी 3 मिनट के लिए बैठे और फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसके बाद सभी प्रस्थान कर सकेंगे। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है बहुत अच्छा अभ्यास है। घंटे में अगर आप 1 मिनट करते हैं तो प्रातःकाल बैठिए 10 मिनट, फिर 20 मिनट, जितना भी कुछ मनन करिए, कुछ अध्ययन करिए। रात को सोने से पहले, हर कर्म शुरू करने से पहले और 1-1 घंटे में, तो आप तो सारा दिन आपको बहुत बहुत खुशी रहेगी, आप राजी रहेंगे और मौज के जीवन होगी। ओम शांति।